स्वागत है आपका संडे दिन भर में। आज है 4 फरवरी दिन रविवार और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में की परिवर्तन रैली, कहा कांग्रेस सत्ता से जाने की कगार पर है।
विरोध करने वालों को विरोध की कीमत अपना जान देकर के चुकानी पड़े, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।
तिरंगा यात्रा के दौरान हुई चंदन गुप्ता की हत्या के कई दिन बाद भी कासगंज नहीं हुआ है सामान्य। सुनिए गए खास बातचीत राजनेता और लेखक शशि थरूर के साथ, जो भारतीय भाषाओं में लिखे साहित्य को उच्च कोटि का मानते हैं।
दूसरे लेखक जो भारतीय भाषा में लिखते हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि लोग उनके बारे में अच्छी तरह नहीं जानते, अच्छे अनुवाद नहीं है उनके लेखक उनके लेख।
लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना रही है और अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस एग्जिट गेट पर खड़ी है। अमरीका के साउथ कैरोलिना में 2 ट्रेनों में टक्कर से 2 लोगों की मौत और 50 के घायल होने की खबर है। ट्रेन ऑपरेटर कंपनी एमट्रेक का कहना है कि न्यूयॉर्क से मायामी जा रही ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे इंजन और कई डब्बे पटरी से उतर गए। घटना के समय 8 क्रू मेंबर और 140 यात्री ट्रेन पर सवार थे। सभी यात्रियों को ट्रेन से निकाल लिया गया है। लेक्सिंगटन काउंटी के सूचना अधिकारी हैरिसन केविल ने बताया, हमें पता चला कि एक यात्री ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई। तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। सभी यात्रियों को ट्रेन से उतार लिया गया। दुर्भाग्य से इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 7 घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भेजा गया है। ये थे लेक्सिंगटन काउंटी के सूचना अधिकारी के शब्द। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने बीजिंग की परमाणु क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर आकलन किया है। चीन ने अमेरिका द्वारा अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाने के फैसले के बाद ये प्रतिक्रिया दी है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका बीजिंग के इरादों को लेकर पूर्वाग्रह भरा रुख अपना रहा है। रूस ने पहले ही अमेरिका की नई परमाणु नीति को टकराव को बढ़ावा देने वाली करार दिया है। वहीं ईरान ने कहा है कि ये नीति दुनिया को विनाश की तरफ ले जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा है कि डोपिंग के दोषी पाए जाने पर जिन 28 रूसी खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था, उसे हटाने का फैसला निराशाजनक है। गुरुवार को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने इन खिलाड़ियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण इन पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। इस पर IOS के प्रेसिडेंट थॉमस बाक ने कहा, दुर्भाग्य से हमें ये नहीं पता कि ये फैसला लिया क्यों गया। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स की प्रेस रिलीज से कुछ पता नहीं चल रहा। विस्तृत फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से कारण बताया जाए। जानकारी मिली है कि जवाब फरवरी के आखिर में आएगा, मगर मामले की गंभीरता को देखते हुए ये संतोषजनक नहीं है। ये थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। उत्तर और दक्षिण कोरिया की संयुक्त हॉकी टीम ने विंटर ओलंपिक से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास मैच में हिस्सा लिया। स्वीडन ने इस संयुक्त टीम को 3-1 से हरा दिया। एरिना में मौजूद BBC संवाददाता ने बताया कि मैच को लेकर दर्शकों में बहुत उत्साह था, लेकिन बाहर छोटा सा विरोध प्रदर्शन भी हुआ। इसराइल अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को स्तरोन्नत करने जा रहा है। पिछले दिनों यहां रहने वाले एक शख्स की फिलिस्तीनी हमले में मौत हो गई थी। रबाई रेजियल शेवा को पिछले महीने उनके घर के पास गोली मार दी गई थी। इस बस्ती को बिना सरकारी इजाजत स्थापित किया गया था, मगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि अब इसे रिहायशी इलाके का स्टेटस दिया जाएगा। इन बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है। इराकी सुरक्षा बलों का कहना है कि सऊदी अरब के पास मरुस्थलीय इलाके में 20 से ज्यादा इस्लामिक स्टेट के लड़ाके मारे गए हैं। अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त स्थानीय सेना, पुलिस और कबायली यहां ऑपरेशन चला रहे हैं। इस्लामिक स्टेट संगठन को इराक के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों से खदेड़ दिया गया है, लेकिन सुदूर इलाकों में इनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद ने सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानने के कदम को तख्ता पलट के बराबर बताया है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ BBCHindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक से, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव कर्नाटक निर्माण परिवर्तन रैली को संबोधित कर विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 महीने से राज्य के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा कर रही है, जिसका मकसद सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जनमत तैयार करना था। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो रहा है और संभावना है कि अप्रैल मई में वहां चुनाव होंगे। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने सत्ताधारी कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार के कामकाज पर जमकर निशाना साधा। जवाब में कांग्रेस ने गुजरात और उत्तर प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ों का हवाला देकर बीजेपी पर पलटवार किया। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनकी पार्टी के कर्नाटक राज्य के नेताओं को खुश करा दिया। उनके भाषण से बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल गए। बीजेपी का मानना है कि करीब 20 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या बीते कुछ सालों से हुई है और यह कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण राजनीति की वजह से हो रहा है। मोदी ने अपने ही अंदाज में ये कहा।
एक आप नवीन की बात कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के रहते हैं, ये लोग मर्डर की चर्चा होती है। स्थिति यह है कि कांग्रेस सरकार का राजनीतिक विरोध करना भी जन्म जोखिम में डालने के बराबर हो गया।
मोदी ने बहुत सारे आंकड़े पेश किए, जिससे वो ये दिखाना चाहते थे कि किस तरह कांग्रेस सरकार ने केंद्र योजनाओं पर परिपालन नहीं किया। लेकिन राजनीतिक रूप से उनका सबसे जबरदस्त हमला था भ्रष्टाचार पर। उन्होंने बीजेपी के चुनावी अभियान को एक नया रूप दिया। मोदी ने कहा,
अब बहुत समय नहीं बचा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वंशवाद, बातें और राज करो विभाजन की राजनीति, ये सारी सोच से कर्नाटक को मुक्त करना।
दूसरी तरफ कांग्रेस के महासचिव बीके हरिप्रसाद ने कहा,
पीएम वाइल स्पीकिंग स्पोक ऑन करप्शन एंड करप्शन एंड द
वो कर्नाटका के बारे में बात कर रहे हैं और जब वो मॉडल राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी थी कि नकली मुठभेड़ों में कितने लोग मारे गए थे। आज ही रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश में 900 नकली मुठभेड़ हुए हैं और हरियाणा में हर दिन 6 बलात्कार होते हैं। कर्नाटका के बारे में बात करने से पहले वो उन राज्यों को देखें जहां बीजेपी सत्ता में है। ये थे बीके हरिप्रसाद के शब्द। इसका मतलब यही है कि आने वाले 3 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी और उनके बीजेपी नेताओं और कांग्रेस नेताओं के बीच एक जबरदस्त मौखिक टकराव होने वाला है, क्योंकि दोनों कांग्रेस और बीजेपी के लिए कर्नाटका में चुनाव जीतना एक महत्वपूर्ण जंग है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पिछले दिनों तिरंगा यात्रा के दौरान हुए विवाद में चंदन गुप्ता नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये वाकया 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन हुआ था। करीब 8 दिन बाद भी शहर में पुलिस की चौकसी कम नहीं हुई है, यानी कासगंज पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार ने वहां जाकर जो देखा, उसके आधार पर ये रिपोर्ट भेजी है।
मैं कासगंज में, मेरे हुलका मोहल्ले में है कुछ लोग, जैसे शंकर हैं, ब्रजेश हैं, राजकुमार आगरा पैथोलॉजी में थे, असोपा हॉस्पिटल में। उन्होंने मेरी बीबी को खून दिया था। उनके जब मम्मी खत्म हुई, पापा खत्म हुए, तो हम कचला घाट पर भी गए थे।
मेहराज खान की पत्नी बीमार पड़ी तो शंकर और ब्रजेश ने अपना खून दिया था। मेहराज खान के हिंदू दोस्त के माँ बाप का निधन हुआ तो कचला शमशान घाट पर गए थे। कासगंज में हिंदू और मुसलमान दशकों से ऐसे ही रहते आए हैं। 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान हुए विवाद और चंदन गुप्ता नाम के युवक के मारे जाने को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। शहर के जिस बड्डू नगर मुस्लिम इलाके में ये सब कुछ हुआ, उसे लोग किसी बड़ी साजिश का हिस्सा मान रहे हैं। इसी इलाके के आसिफ कहते हैं,
जो चंदन गुप्ता जी खत्म हुए, उस बात के लिए हमें बहुत अफसोस है, बेहद अफसोस है। वो बहुत बड़ा कलंक है, लेकिन हम प्रशासन से, शासन से मांग करेंगे कि कोर्ट में उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं वो देखें और निकलवाएं और सच्चाई को सामने लाएं।
चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने 18 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। इनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कासगंज के एसपी पीयूष श्रीवास्तव कहते हैं,
7 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, इसके अतिरिक्त 9 जो प्रकाश में है वो गिरफ्तार हुए हैं। टोटल मिला के प्राइवेट एक्शन में 81 आदमी जेल गए हैं। टोटल आईपीसी में 45 अभियुक्त जेल गए हैं। 12 अभियुक्त अभी भी हमारी कस्टडी में है, जिनसे और पूछताछ की जा रही है।
बड्डू नगर के मुसलमानों का कहना है कि चंदन पर जिसने गोली चलाई उसका सच सामने आना चाहिए। उन्हें इस हत्या का दुख है, पर पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसे लेकर ये आशंकित हैं। इनका कहना है कि कई ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जो उस दिन शहर में मौजूद नहीं थे। उधर चंदन गुप्ता के घर का मातम भी पिता पर पहाड़ बनकर टूटा है। पिता सुशील गुप्ता मानते हैं कि उनके बेटे की जान राष्ट्रध्वज के कारण गई है, इसलिए शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। वो जिस कमरे में बैठे हैं वहां माला पहनाई बेटे की तस्वीर लगी है। तस्वीर के पीछे दीवार पर तिरंगा चिपका है। सुशील गुप्ता कहते हैं,
मेरा बच्चा चला गया, मेरे नसीब में नहीं था बच्चा, तिरंगा लेकर के गया था, तिरंगे में ही लपेट के आ गया बस।
कीर्ति गुप्ता चंदन की बड़ी बहन है, वो दिल्ली में बैंक की तैयारी कर रही है। जब भी कीर्ति घर आती थी तो भाई को अंग्रेजी पढ़ाती थी। उनके मन में एक कसक है कि उनका भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में दिलजान से लगा रहता था, पर उसकी मौत के बाद वो संवेदना जताने नहीं आए।
उसको बहुत अच्छे लगते थे योगी जी, मतलब वो कहता था जीतना चाहिए, कोई सीएम हो अगर है ना यूपी में तो फिर सिर्फ और सिर्फ योगी बनना चाहिए और कोई नहीं। जब वो है ना कहीं किसी भी है ना सम्मेलन में जा सकते हैं, किसी मेले का आयोजन करने के लिए जा सकते हैं, किसी मंदिर को देखने के लिए जा सकते हैं, तो एक घंटे का कुछ टाइम थोड़ा सा निकाल के वो यहाँ भी आ सकते थे।
कासगंज के लोगों का कहना है कि इस शहर की पहचान अमीर खुसरो और गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के रूप में है। कासगंज के लोग इस सांप्रदायिक हिंसा को शर्मिंदगी की तरह देख रहे हैं। हालांकि अब सब कुछ सामान्य है, लेकिन शहर की फिजाओं में जो एक किस्म का अविश्वास पैदा हुआ है उसे खत्म होने में लंबा वक्त लगेगा। रजनीश कुमार, BBC, कासगंज।
पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में रहने वाले अंकित सक्सेना के परिजनों को इंसाफ का इंतजार है। 2 दिन पहले 23 साल के अंकित की उनके घर के पास ही गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि वो एक लड़की से प्रेम करते थे और लड़की के परिवार वालों को उनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था। सुनिए सिंधुवासिनी की रिपोर्ट।
बच्चा अपने अंकल के कंधे पे हाथ रख के कहता ना, अंकल क्या चल रहा है, अंकल कैसा चल रहा है, नई गर्लफ्रेंड फंसाई। वो इतना अच्छा लड़का था ना, अब इससे आगे नहीं।
अंकित सक्सेना के पड़ोसी है जो उनकी बर्बर हत्या से इस कदर दुखी हैं कि अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे। 2 दिन पहले अंकित को पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में कथित तौर पर उनकी प्रेमिका के माता पिता, भाई और मामा ने मिलकर मार डाला था। कहा सुने से शुरू हुआ ये झगड़ा इतना बड़ा कि पुलिस के मुताबिक लड़की के परिजनों ने अंकित की गर्दन में छुरा घोंप दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब हम अंकित के घर पहुंचे तो पता चला कि उनके पिता उनकी अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए हुए हैं, उनकी माँ अस्पताल में भर्ती हैं।
अंकित के पड़ोसी मीडिया से बेहद खफा हैं। उनका कहना है कि मीडिया इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाकर और सांप्रदायिक रंग में रंगकर पेश कर रहा है। उन्हें इस बात से भी शिकायत है कि अंकित के परिवार की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है।
ये इशू हमने मोमडन वाला हिंदू वाला उठाया ही नहीं, फिर भी मीडिया ने उठाया।
इसमें उसकी कोई बात ही नहीं करनी, हमने हिंदू मुसलमान की हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें कुछ करना ही नहीं मीडिया के साथ।
लड़ाई झगड़ा होना होता मिट्टी से पहले हो जाता,
लेकिन ये 15 दिन बाद ये
अगर हमने ये चीज नहीं करी बाहर बहुत बंदे
पूछेगा,
बहुत खड़े हैं।
पश्चिमी दिल्ली के DCP विजय कुमार सिंह का कहना है कि सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जल्दी ही उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।
केस में जो अलीज थे 4, ऑल ऑफ देम हैव बीन अरेस्टेड। एक माइनर था तो ऑफ कोर्स ही इज अप्रिहेंडेड, नॉट अरेस्टेड। दे आर सेंट टू जुडिशियल कस्टडी एज वेल एज जुवेनाइल जस्टिस ऑब्जर्वेशन होम। गर्ल इज इन नारी निकेतन।
रघुबीर नगर में सब कुछ वैसा का वैसा है। फरवरी की 14 तारीख यानी वैलेंटाइंस डे का इंतजार करती लाल रंग के फूलों से सजी दुकानें, सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार कराती माएं और मंदिर से आती कीर्तन की आवाज। इस भीड़ और कोलाहल में अगर कोई नहीं है तो वो है अंकित। भूमिका राय के साथ सिंधुवासिनी, BBC दिल्ली।
खबर सच है अगर BBC पर है।
अगर भारत के यथार्थ को समझना हो, यहाँ के अलग अलग हिस्से में रहने वाले लोगों, किसानों, मजदूरों का दुख दर्द जानना हो तो भारतीय भाषाओं में लिखा साहित्य पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद के जरिए भारतीय साहित्य की शक्ति को समझना उसका सही मूल्यांकन नहीं है। ये कहना है राजनेता और अंग्रेजी के जाने माने लेखक शशि थरूर का। दरअसल लंदन से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका लिट्रो के ताज़ा अंक ट्रांसलेटिंग इंडिया के अतिथि संपादक के तौर पर शशि थरूर ने भारतीय भाषाओं में लिखने वाले 11 लेखकों की कहानियों का चुनाव किया है और उनका दावा है कि दुनिया में जिन 20-25 भारतीय लेखकों का नाम जाना जाता है उनमें से 7 या 8 इस सूची में शामिल हैं। अपनी अंग्रेजी और अंग्रेजी में दिए बयान के कारण विवादों में रहे शशि थरूर से हाल ही में संपन्न हुए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी ने खास मुलाकात की और उनकी साहित्यिक समझ से जुड़े कई सवाल किए, लेकिन सबसे पहले यही पूछा कि अंग्रेजी से इतर भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे साहित्य को वो किस नजरिए से देखते हैं।
तो कह जा सकता है कि अंग्रेजी लेखकों जो हैं दुनिया भर नेचुरली ज़्यादा जान पहचान है लोगों को, क्योंकि वो लोग इस भाषा इस्तेमाल करते हैं जो दुनिया भर लोग जानते हैं। मेरे ख्याल में इसकी वजह से, और शायद हमारे अनुवाद की क्वालिटी भी ज़रा सा कमज़ोर है, इसकी वजह से भारतीय भाषा में जो लेखक लिख रहे हैं शायद ये इंग्लिश लेखकों से बेहतर लिखते होंगे, लेकिन जानकारी तो बहुत कम है अंतर्राष्ट्रीय लेखन में भी। बिल्कुल, तो मुझे ये लग रहा है कि ये ज़रूर किया जा सकता है कि एक डिस्प्रोपोर्शन है। मैं नहीं कहूँगा कि अंग्रेजी लेखकों की क्वालिटी एग्जैजरेटेड है या जैसे आपने कहा था कि ओवररेटेड है, क्योंकि ये मत भूल जाइए कि लोग जो अंग्रेजी लेखकों को तारीफ़ कर रहे हैं उनका भी एक स्टैंडर्ड होता है, उनको पता है कि किस किस्म की क्वालिटी वो लोग पहचानते हैं, वो लोग मानते हैं, आदर करते हैं, और कम से कम उतनी क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन ये मैं मान सकता हूँ कि दूसरे लेखक जो भारतीय भाषा में लिखते हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि लोग उनके बारे में अच्छी तरह नहीं जानते हैं, अच्छे अनुवाद नहीं है उनके लेख के, शायद उसके कारण उनको इतना रिकग्निशन नहीं दिया हुआ है जितने कि उनको मिलना चाहिए। दे हैव नॉट गॉट व्हाट दे डिजर्व।
आप उस बात को एकदम एक तरह से काट रहे हैं जो सलमान रुश्दी ने कही और जिसके बारे में आपने ट्रांसलेटिंग इंडिया लिट्रो मैगजीन में लिखा भी है। सलमान रुश्दी ने कहा था कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी ज़बानों में लिखा जाता है उसकी क्वालिटी कोई बहुत बेहतर नहीं है।
देखिए, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तानी ज़बान जो लेखक इस्तेमाल करते हैं वो लोग, बहुत लोग हैं जो अंग्रेज़ी भी जानते हैं, लेकिन उसने अपने ही भाषा में लिखने का उन्होंने चुन लिया कि
अपनी भाषा में,
अपनी भाषा में ही लिखना चाहिए। इस चॉइस का मतलब नहीं है कि वो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं कि दुनिया भर में क्या क्या लोग लिख रहे हैं अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं में। मैं ये भी कहूँगा कि अनुवाद में कई लिमिटेशंस होते हैं, कई सीमाएं हैं, क्योंकि एक भाषा सिर्फ एक ज़ुबान नहीं है, लेकिन शब्द के पीछे जो कुछ आप कहेंगे कि कल्चरल अजम्पशंस होते हैं, आप एक शब्द इस्तेमाल किए, ये कौन सी शब्द है, सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन जो एक डिक्शनरी में देखा जाएगा उससे नहीं चलेगा, क्योंकि कोई शब्द हो गया जैसे तुम और आपके फ़र्क तो अंग्रेज़ी में नहीं है,
उसको समझाना मुश्किल है,
समझाना मुश्किल है, सारे फुटनोट्स करेंगे तो लोग पढ़ेंगे भी नहीं। तो आप जब अनुवाद करते हैं भारतीय भाषाओं से आप कई चीज़ों को खो जाते हैं रास्ते में। कोई फेस्टिवल के बारे में, कोई होली के लिए तैयार हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है, होली क्या चीज़ है, अंग्रेज़ी में शायद लोग समझते नहीं होंगे, या कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस जो हो, या आपको पता है कि कोई ऑब्जर्वेंस, आपका पिताजी का देहांत हुआ, एक साल बाद आप क्या कर रहे हैं, हिंदी में ये सब लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग जानते हैं, ये उनकी रीति ऐसी है। लेकिन जब अनुवाद करते हैं कितने चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये कहानी की क्वालिटी नेचुरली कम हो जाती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मेरे ख्याल में हमारे अनुवाद को और हमारे साहित्य को समझने के लिए विदेश लोगों को कभी कभी दिक्कत होते हैं। कुछ भारतीय लेखक हैं जो अच्छी तरह जान पहचान है इंग्लिश ट्रांसलेशन में, जैसे कि अनंत मूर्ति जो कन्नड़ा में लिखता था, जैसे सुनील गंगोपाध्याय जो बंगाली में लिखता है, कभी कभी हिंदी लेखक निर्मल वर्मा जी तो काफ़ी अच्छे रिकग्निशन मिले उनको इनको विदेश में।
भाषा की जब बात होती है, भाषा में लिखने की बात होती है, तो वो पॉलिटिक्स से अलग नहीं होती। मुझे आपकी बात से याद आया अफ्रीकन राइटर निगोंगी वाथियोंग
जी,
उन्होंने अंग्रेजी की राइटिंग को पूरी तरह से डिनाउंस करके ये कहा कि मैं गिकुयू में लिखूंगा। हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी पढ़े लिखे होते हैं या अच्छी खासी अंग्रेजी पढ़े लिखे होते हैं वो अंग्रेजी में ही लिखना पसंद करते हैं?
नहीं, अलग है। निर्मल वर्मा तो सेंट स्टीवंस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ के बाहर आया, अनंत मूर्ति तो अंग्रेजी का प्रोफेसर था, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता था और कन्नड़ा में अपनी किताबें लिखते थे। ओ वी विजयन जो अंग्रेजी में जर्नलिज्म और कार्टूनिंग करता था, उसने 14 साल के बाद मलयालम सीख लिया और उनके नॉवल सारे मलयालम में लिखे हुए हैं। कभी कभी उसने खुद ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में, लेकिन ओरिजिनल तो मलयाली में लिखा। तो ऐसे लोग हैं भारत में, ऐसे मत सोचिएगा कि इनगुगी जो केन्या में किया था कि उसके पहले किसी ने नहीं किया, भारत में हम लोग किए हैं। लेकिन ये भी बात है कि जो उसने किया भारत में, दुनिया में किसी को ये जानकारी नहीं। इनगुगी जब ने ये किया, होल वर्ल्ड को समझ आया कि ये हो रहा था। लेकिन भारत में निर्मल वर्मा की उदाहरण, अनंत मूर्ति के और
बच्चन उनसे पहले जो
हरिवंश राय बच्चन भी बिल्कुल अच्छी तरह अंग्रेजी बोलते थे,
अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और उसके बाद उन्होंने जो है हिंदी में कविता लिखते थे, हिंदी के साहित्यकार थे। ये जो ट्रांसलेटिंग इंडिया लिटरो ने शुरू किया है या ये एक कोशिश है, इससे आप जुड़े रहे हैं?
जी, मैं गेस्ट एडिटर हूँ, मतलब इसमें चुनने के लिए और इनके एक इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। एरिक,
मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो ये आपने लेखक चुने हैं, ये किस आधार पर चुने हैं, और इनमें हिंदी का लेखक क्यों नहीं है?
बात यह है कि हम कई जगह से ढूंढना कोशिश किए, हम कई लोगों से लिखे, हमें जवाब भी नहीं मिले। हिंदी लेखक, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, शायद कम्युनिकेशन पत्र हमारे तरफ से नहीं मिले होंगे, लेकिन हम मेरे ख्याल में करीब 40 लेखक के पीछे दौड़ने के बाद हमें जितने सबमिशंस मिले क्वालिटी वाले, यही देखा।
क्या आपको ये लगता है, मतलब मैं एक तरह से अस्यूम कर रहा हूँ, ये आपको नहीं लगता है तो आप कह दीजिएगा मुझे ऐसा नहीं लगता है, कि हिंदुस्तान में जो अंग्रेजी में लिखते हैं, क्या वो हिंदुस्तान को नहीं समझते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप?
नहीं,
और
नहीं,
हिंदुस्तान
नहीं,
को समझने के लिए सिर्फ हिंदुस्तानी भाषाएं जो हैं?
नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा मैं,
क्योंकि कंफ्यूजन, ये गलतफहमी नहीं है।
अंग्रेजी भी एक भारतीय भाषा है, भूल जाइए मत कि हमारे नेशनलिज्म, हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा अंग्रेजी थी, क्योंकि अंग्रेजी में ही जवाहरलाल नेहरू अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा, अंग्रेजी भाषा में ही उनको बात करके राजगोपालाचारी को समझ में आया। आप ये सब सोचना चाहिए, गांधी जी तो गुजराती बोलने वाला था, तो उसने हिंदी पढ़ के अच्छी तरह हिंदी भी बोलता था, लेकिन दक्षिण भारत के कई लोग को अपने उत्तर भारत के ये स्वतंत्र संघर्ष के दोस्तों के साथ संपर्क करने के लिए अंग्रेजी ही था। तो मैं कहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम से ही, के समय से ही अंग्रेजी एक भारतीय भाषा बना है, और ये 70 साल में अंग्रेजी हमने अडेप्ट किए। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके जिस किस्म की अंग्रेजी लोग बोलते हैं, शायद ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज में समझाएंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं लोग, लेकिन ये हमारी भाषा है, हमारी ज़ुबान में ये चलेगा। चेतन भगत जो अंग्रेजी किताबें लिखते हैं, वो कोई और देश में पढ़ के समझने की अंग्रेजी नहीं है, यहाँ तो कोई कठिनाई नहीं, वो बेस्ट सेलर होते हैं, 5-10 लाख कॉपी हर किताबें बिकते हैं, क्योंकि भारतवासियों जो इस किस्म की अंग्रेजी बोलते हैं वो लोग खरीद के पढ़ लेते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि भारतीय में कहीं कहीं किस्म की रियलिटी है। जी, गांव की जीवन के लिए शायद अंग्रेजी फिट नहीं होगा। अगर आप एक IAS ऑफिसर की कहानी लिखना चाहते हैं, जैसे उपमन्यु चैटर्जी ने की इंग्लिश ऑगस्ट में, तो इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, क्योंकि उनका सोच अंग्रेजी में है। अगर आप कोई गाँव के बारे में कोई किसान की कहानी लिख रहे हैं, तो उन्हीं के भाषा में लिखिए, क्योंकि
मालगुडी डेज तो अंग्रेजी में ही लिखी गई, मालगुडी डेज।
जी, मालगुडी डेज तो छोटा टाउन का, छोटा शहर की कहानी है, उसने तो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। और ये भी समझना चाहिए कि हमारे देश में जो भी भाषा इस्तेमाल करेंगे उसमें एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। अगर मैं एक ऑटो रिक्शा लेके ड्राइवर को अंग्रेजी में बोलना लगा, तो नैसे वो थप्पड़ मारेगा इसके।
अंग्रेजी की वजह से आप मुसीबत में पड़े हैं। इंटरलोक्यूटर एक शब्द का आपने इस्तेमाल कर दिया, जिससे
कोई गलती नहीं,
जिस आपने गलती की हो ना की हो, लेकिन हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में जो उसका इंटरप्रिटेशन हुआ, उससे तो एक तरह से डिप्लोमेटिक क्राइसिस शुरू हो गई इंटरलोक्यूटर की वजह से। फिर फरागो जैसे शब्दों का इस्तेमाल जब आप करते हैं, बड़े जोक्स बने हैं। आप खुद क्या महसूस करते हैं अपनी अंग्रेजी जबान पर?
देखिए, मैं तो पढ़ के समझ, मैं तो डिक्शनरी पढ़ के नहीं, तो मैं तो सिर्फ किताब पढ़ के, और मेरे बचपन में तो ना टेलीविजन था, ना कंप्यूटर थे, ना मोबाइल फ़ोन, ना निंटेंडो। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए था, आपको एजुकेशन चाहिए था, आपको मज़ा चाहिए था, किताब की तरफ ही जाते थे। तो मैं किताब पढ़ के मेरी वोकैबुलरी भी बढ़ गई। ये नहीं है कि मैं बड़ी लफ्ज़ों इस्तेमाल करना बहुत पसंद करता
हूँ,
बिल्कुल नहीं। मैं जिस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता हूँ, मेरे ख्याल में जिस सोच को मैं एक्सप्रेशन देना चाहता हूँ, उसके लिए सबसे पर्याप्त शब्द ये है। इसी शब्द से मेरी आइडिया कम्युनिकेशन हो जा रही है। जिनको ये शब्द नहीं मालूम है, वो डिक्शनरी देख सकते हैं।
आप डिप्लोमेट थे, वहां से आप 30 साल आपने यूएन में काम किया, उसके बाद आप हिंदुस्तान लौटे और हिंदुस्तान में आप पॉलिटिक्स में एंटर करके, जबकि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, यहाँ की राजनीति, ये समझ लीजिए कि दलदल में कदम रखने जैसा है। आपको कोई कुछ रिग्रेट है, कुछ गड़बड़ की आपने, कुछ और करते तो ज़्यादा बेहतर रहता?
नहीं नहीं, कभी कभी नेचुरली महसूस होता कि माय गॉश मैंने क्या क्या ले लिया, क्या बोझ मेरे सिर के ऊपर पड़ा, लेकिन दूसरे भी मौके हैं, शायद ज़्यादा है, जिसमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। जो आपके एक्शन से आप दूसरों की ज़िंदगी बदल सकते हैं अच्छी तरह से, मेरे कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए क्या कोई नया प्रोजेक्ट ले आ सके, कोई कठिनाइयों को रिजॉल्व करके कई किस्म की सफलता पा सके हैं एमपी के रूप में। इसलिए मैं सोचता हूँ कि राजनीति सिर्फ एक चीज़ नहीं है, कई बहुत बहुत अलग अलग चीज़ होते हैं। और मेरे ख्याल में ऑन बैलेंस मैं कहूँगा कि अगर आप तुल्य हैं तो शायद राजनीति से मुझे कोई पॉजिटिव चीज़ें कर सका।
लेकिन जब आपके ऊपर ये तनकीद होती है, कमेंट होता है कि नेशनल टेलीविज़न में जब आपको चैलेंज करते हुए एंकर कहता है कि डरपोक कहाँ छुपा है, तो आप क्या उस पर कैसे मानते हैं अमेरिका की आपकी लाइफ और हिंदुस्तान?
जो भी मेरे बारे में जानते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं कहीं भी छुपा नहीं हूँ। मैं तो हर चीज़ खोल के बोलता हूँ, खोल के करता हूँ, और मैं तो कहीं किसी से भी छुपाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बदतमीज़ लोग चीज़ें कहते हैं जिसको जवाब देने लायक नहीं है, मैं जवाब क्यों दे दूँ? सीरियस प्रश्नों के लिए, सीरियस विषयों के लिए नेचुरली मैं तो बात करता हूँ। इस देश में कोई मुद्दा नहीं, कोई समस्या नहीं है जिसके ऊपर मेरी राय मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि लोग तमीज़ से ज़रा कॉन्टैक्ट कर दीजिए आपके साथ।
डॉक्टर शशि थरूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला।
ये थे मशहूर लेखक और राजनेता शशि थरूर से खास मुलाकात। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिएगा। भारत ने दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त जी। आदेश, क्या कहेंगे मैच के बारे में?
जी अमरीश जी, ऐसा लगता है कि भारत ने इस मैच को एक ही आस से जीत लिया, क्योंकि भारत के सामने जीत के लिए केवल 119 रनों का लक्ष्य था, जो भारत ने 20.3 ओवर में कप्तान विराट कोहली के नाबाद 46 और शिखर धवन के नाबाद 51 रन की मदद से 20.3 ओवर में केवल एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले आज टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर पूरी दक्षिण अफ्रीकी टीम 32.2 ओवर में केवल 118 रन ही बना सकी। भारत के युजवेंद्र चहल ने 22 रन देकर 5 विकेट लिए, लेकिन मैच में तब बड़ा अजीब सा लगा जब भारत को जीत के लिए केवल 2 रनों की ज़रूरत थी और अंपायर ने लंच का ऐलान कर दिया। हालांकि 15 मिनट का समय होता है, ऐसे में अंपायर खेल जारी रख सकते हैं। अंपायर के इस निर्णय से गुस्सा आए, कमेंटेटर बोले,
No, I can't believe this. This is just quite ridiculous. That's the end of the over. They need 2 runs to win.
तो खैर, इससे भारत की जीत का मजा बिल्कुल किरकिरा नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर पहले इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा, जब विवेन झेंग ने उन्हें 21-18, 11-21, 22-20 से हरा दिया। ये मुकाबला 1 घंटे 9 मिनट तक चला।
जी आदेश कुमार गुप्त, खेल समाचारों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना रही है और एग्जिट गेट पर खड़ी है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में 2 ट्रेनों में टक्कर से 2 लोगों की मौत और 50 के घायल होने की खबर है। ट्रेन ऑपरेटर कंपनी का कहना है कि न्यूयॉर्क से मायामी जा रही ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने बीजिंग की परमाणु क्षमता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। चीन ने अमेरिका द्वारा अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाने के फैसले के बाद ये प्रतिक्रिया दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा है कि डोपिंग के दोषी पाए जाने पर जिन 28 रूसी खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था, उसे हटाने का फैसला निराशाजनक है। उत्तर और दक्षिण कोरिया की संयुक्त हॉकी टीम ने विंटर ओलंपिक से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास मैच में हिस्सा लिया, जिसमें उसे स्वीडन से 3-1 से हार मिली। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ दिनभर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया राजेश चौहान ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुँचाया मीना कोटवाल ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।